Market Mantra. Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor Ambrish Saxena.
Namaskar. Aarthik Khabron ke karyakram Market Mantra ke taaza ank mein aapka swagat hai. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम हमेशा की तरह देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक कारोबारी और शेयर बाजार से जुड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक दीप शिखा सिकरवाल। दीप शिखा जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
नमस्कार अमरीश जी।
और अब अंग्रेजी में हेडलाइंस लेके मौजूद है मेरे सहयोगी अर्जुन चौधरी।
Prime Minister Narendra Modi will address a Kautilya economic conclave tomorrow in New Delhi. Domestic benchmark indices continue their downward trend for the fourth consecutive session. Sensex tanks over 1700 points, Nifty settles below 25,300. And crude oil prices spike amid supply disruption fears. Brent crude is trading at $74.90 per barrel.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम राजधानी में कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे। घरेलू शेयर बाजारों में आज लगातार चौथे दिन भी गिरावट का दौर जारी रहा। सेंसेक्स में 1,700 अंकों की गिरावट दर्ज की गई, निफ्टी 25,300 अंकों पर बंद हुआ और कच्चे तेल के मूल्यों में आपूर्ति व्यवधान की आशंका के बीच तेजी दिखाई दी। ब्रेंट क्रूड का मूल्य $74.90 प्रति बैरल दर्ज किया गया। और आज की पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम नई दिल्ली में कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे। इस कॉन्क्लेव का तीसरा संस्करण कल से 6 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष का सम्मेलन हरित परिवर्तन के लिए वित्त पोषण, भू आर्थिक विखंडन और विकास के लिए अनुमान और लचीलापन बनाए रखने के लिए नीतिगत कार्रवाई के सिद्धांतों जैसे विषयों पर केंद्रित होगा। कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का आयोजन वित्त मंत्रालय के साथ साझेदारी में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ द्वारा किया जा रहा है। और चलते हैं शेयर बाजारों का हाल जान लेते हैं। घरेलू शेयर बाजारों में चौतरफा भारी बिकवाली के बीच आज गिरावट का रुख चौथे दिन भी जारी रहा। बाजारों में दो महीने की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। दुनिया के बाजारों में कमजोरी और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के चलते ऐसा हुआ। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1,769 अंकों की गिरावट के साथ 82,497 अंकों पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 546 अंक लुढ़ककर 25,250 अंकों पर आ गया। प्रत्येक सूचकांक में 2.1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 102 कंपनियों ने 52 सप्ताह का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जबकि 65 कंपनियों ने 52 सप्ताह के न्यूनतम स्तर को छुआ। बंबई शेयर बाजार के व्यापक बाजार में भी गिरावट दिखाई दी। मिड कैप सूचकांक 2.2% और स्मॉल कैप सूचकांक 1.8% गिरा। सेंसेक्स सूचकांक की 30 में से 29 कंपनियों ने गिरावट दर्ज की।
Domestic benchmark indices Sensex and Nifty continued the downward trend for the fourth consecutive session following massive selling across all sectors. The markets witnessed the biggest fall in 2 months, impacted largely by weak global sentiment amid escalating conflict in West Asia. At close, Sensex tanked 1,769 points to close at 82,497, while Nifty tumbled 546 points to settle at 25,250. Both the stock market indices dipped over 2.1% each. In the National Stock Exchange, 102 companies hit their 52-week high, 65 hit their 52-week low. The broader market at the Bombay Stock Exchange also ended in negative territory. The mid-cap index was 2.2% down and the small-cap index lost 1.8%. In the Sensex pack of 30 companies, 29 out of 30 ended in the negative territory. The top laggards were Larsen & Toubro, Axis Bank and Tata Motors, which slumped by over 4%. Reliance as well as Maruti declined over 3.9% each, and Asian Paints fell by 3.8%. Conversely, the only gainer today was JSW Steel, which gained more than 1%. In sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, all 20 sectors logged losses. The top laggards were realty, which plummeted by nearly 4.5%, capital goods fell more than 3%, and auto shed nearly 3%. The overall market breadth at the BSE was negative, as out of 4,076 companies, shares of 1,107 advanced, 2,881 declined, and 88 remained unchanged.
और विदेशी मुद्रा बाजार में आज रुपया 14 पैसे कमजोर हुआ. एक डॉलर की कीमत 83.96 रुपये दर्ज की गई. अमरीकी डॉलर की मजबूती, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और घरेलू शेयर बाजारों में 2% से अधिक की गिरावट के चलते रुपये ने खराब प्रदर्शन किया. विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमरीकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतरदिवसीय कारोबार में 101.89 पर कारोबार कर रहा था. दीपशिखा जी, शेयर बाजार का हम देख रहे हैं, हाल की लगातार चौथे दिन गिरावट रुक नहीं रही है, तो आपको क्या लगता है कि जिस सिर्फ ये जो बिकवाली है या जो मुनाफा वसूली है उसके चलते ऐसा हो रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह की हलचल है, जो तनाव है या जो कच्चे तेल के दाम है, उनका ज्यादा असर बाजार पर हो रहा है?
अमरीश जी, अगर आप भारतीय बाजार को देखें और भारतीय अर्थव्यवस्था को देखें तो फंडामेंटल्स में ऐसा कोई बदलाव नहीं है. अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में है, लेकिन जो मिडल ईस्ट में हो रहा है और ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि जो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट है और गहरा सकता है, तो वो एक नर्वसनेस, वो पूरा एक सेंटिमेंट जो है उसको खराब कर रहा है और बहुत नेगेटिव सेंटिमेंट है, क्योंकि अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कहाँ तक जाएगी, कितना और बढ़ेगी, व्यापक होगी. तो ये सारा जो है वो इसका असर मार्केट के सेंटिमेंट पर आ रहा है, और ये पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि ये थोड़ा बड़ा है. उसके पहले थोड़ा करेक्शन आ रहा था, फेस्टिवल सीजन से पहले अक्सर देखा जाता है, तो वो करेक्शन जो है महसूस किया जा रहा था. लेकिन अब जो ये आज की गिरावट है, खास तौर पे अगर हम देखें तो ये ज्यादातर उस वेस्ट एशिया में जो हो रहा है, मिडल ईस्ट में जो हो रहा है, उसमें जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं, अब आगे जो बाजार दिशा पकड़ेगा उसी के हिसाब से पकड़ेगा.
तो अगर आपको जो हाल है अभी मिडिल ईस्ट में, अगर सचमुच लड़ाई शुरू हो जाती है इसराइल और ईरान के बीच, फिर हमारे बाजार का क्या हाल होगा?
देखिए, बहुत सारी अनिश्चितताएं. अगर वो जैसे कहते हैं कि यू शुड नेवर कैच द फॉलिंग नाइट्स, तो जाहिर सी बात है एंट्री जो हम पहले बात करते थे कि अगर एंट्री लेवल मिल रहा है, थोड़ा करेक्शन आया है, तो आप कर लीजिए एंट्री. लेकिन इस समय बाजार में घुसने का कोई मतलब नहीं है. अगर हम देखें बाजार जो है वैल्यूएशन के टर्म्स में काफी ऊपर पहुंच गया था, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रॉफिट पर ही बैठे हुए. तो अभी थोड़ा सा देखें क्या रुख लेती है ये लड़ाई और उसका क्या असर होता है बाजार पर, क्या व्यापक होती है या लिमिटेड रहती है उस रीजन में. तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये प्ले अप करेंगे.
दीपशिखा, स्पीकिंग अबाउट वैल्यूएशन एंड प्रॉफिट बुकिंग, वी सॉ एफआईआईज बीइंग द नेट सेलर्स इन द मार्केट टुडे टू द ट्यून ऑफ मोर देन 15,000 करोड़ रुपीज, एंड we saw covering by DIIs. They ensured that the market didn't bottom up by buying 13,000 crore rupees worth of equity in today's trading session. Of course, this is provisional data. The question is, because externalities, what's happening in West Asia, and in fact, the conflict has begun, but you know, it'll gain more traction, as my co-anchor just mentioned. What is the duration of that, and what's the likely impact? Is it 36 hours? Is it more than that because there are calls for ceasefire? How long will this continue? The U.S. markets appear to be relatively unaffected, but the Asian markets are badly affected.
Arjun, we don't really know as to, you know, what form this crisis is going to take. There has been an escalation and there is no denying in that. There will be some retaliation from Israel. There is no denying that. They've been vocal about it. And after that, what form it takes is very, very uncertain. And I think that is the uncertainty which is playing out on the sentiments in the region particularly. And it's more on this side because I guess it is also driven by what will happen to the crude, what will happen, because the region is quite closer to where the conflict is. So obviously, there's going to be much more impact. Because already we've seen, you know, what happened in Red Sea in terms of, you know, shipping premier and other issues. The trade got impacted. The costs, overheads increased for exporters and importers both. So I think those are the factors that are probably playing on the investors' mind, and which is what we are seeing as a reaction in the Indian market or other markets as well.
But that's a macro reaction. Let's look at the micro part of it. You have in the economic calendar, you have the second quarter results, which are being declared as we speak right now. IT sector will be declared from next week onwards. These are bellwether stocks. Then you have the F&O curbs by SEBI just to bring down speculative trading in futures and options. And then you have a bullish IPO market, which is likely to take a hit because of what's happening right now. So I'm sure the small investor, whoever is looking for allocations, would be looking at expert advice, what to do in the short term. How is the market going to behave? Because volatility right now has gone up by 10%, even though it is still 13, it's below the 20 mark. What is your advice to the small investors?
So like I said, you know, you don't catch falling knives. But the thing is, for small investors, I think you need to find safer bets. Banks are giving you good returns in terms of interest rates on fixed deposits. So if you have cash, it may not be a very good time to, you know, make an entry into the market because we don't know what direction the market is going to take. So it's better to sit tight. But I am also not saying that it may be a time to sell out totally because it's the conflict there. It's still to sort of we still have to see how it is shaping up, because obviously the other players would also, you know, start having some role to play there in terms of there will be calls for ceasefire, there will be call for peace and so on and so forth. So I think it's right now it's a wait and watch.
Falling knives. What about the central bank? How do you see them recalibrating the repo rate on the 9th of October? So it's all coming quite close to what's happening right now geopolitically. The repo rate is 6.5%. Do you see a cut in the repo rate, which will have an impact on rate-sensitive stocks like realty and banking and auto? Because the CPI for August, the inflation data is 3.65%. So how is the central bank going to take care of this? Because, you know, they are looking at liquidity in the market as well, while at the same time ensure savings in the bank account.
So you also have to see right now, in terms of we saw some seasonal element in terms of, you know, vegetable prices, vegetable inflation. those are also things that the Reserve Bank is keeping close tabs on. The other thing I think which has sort of which could skew up the data is the rising crude prices because of the conflict. So it would be, I think RBI also would be taking a very cautious call depending on how the conflict sort of shapes. Because if the crude prices rise below the comfort levels or whatever the internal target numbers are, it would be a difficult call to, start cutting right now.
Deepshika ji, hum agar rupay ki baat kare, bahut hi zyada giravat aaj darj ki gayi, 14 paise kamzor hua rupya. To kaun se aise khas karan hai ki jo itna steep hame fall dikhai diya?
अगर रुपए की बात करें तो दरअसल रुपए में जो गिरावट है वो गिरावट को ना देखते हुए हम ये देखें कि डॉलर में बहुत बढ़त हुई है. तो जो सारी मुद्राएं हैं, सारी करेंसीज हैं, उन सब में गिरावट दर्ज की जा रही है. क्योंकि होता क्या है कि जब कोई क्राइसिस होती है, कोई ऐसा बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो डॉलर को एक सेफ हेवन करेंसी माना जाता है. तो पैसा जो है, इन निवेशक जो है उसकी तरफ ही जाते हैं, जिसकी वजह से डॉलर काफी अप्रिशिएट हुआ है और उसका असर आपको दिख रहा है रुपए पर.
यू हैव द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक कॉन्क्लेव, द कौटिल्या इकोनॉमिक कॉन्क्लेव टुमारो इवनिंग. सो यू स्पोक अबाउट द मैक्रो इफेक्ट्स बाय द एक्सटर्नैलिटीज. हाउ डू यू सी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड प्रोडक्टिविटी इन द कंट्री बीइंग डिस्कस्ड टुमारो at the meeting?
I think the Kautilya Economic Conclave tomorrow, PM, Finance Minister Nirmala Sitharaman, they all are addressing is External Affairs Minister Jaishankar also has a session there on the 6th. I think the whole idea of the conflict and what the policy makers are trying to would possibly be alluding to is, the India growth story. There are a lot of foreign dignitaries in terms of economists from all over the world who are coming. And also to get their inputs on what India should do going ahead as it eyes, the 2047 goal of becoming a developed country. What kind of policy interventions should it need to take? And also in terms of the changes, there is climate challenge which is there staring at us and also the world, how to finance this green transition. And in terms of geopolitics, how to sort of navigate geopolitics. So I think inputs would be sought from experts in these very areas on how should India navigate, and also to tell them how the India story, and India happens to be shining bright in terms of growth numbers globally. And all the estimates by international agencies point at 7%. So I think that is a story which would probably be told there.
I want to bring attention to the auto sector because, even a company like Hyundai Motor Company is coming out with an IPO on the 17th of October itself. But auto sales have come down. Inventory buildup is there. If you take the example of Tata Motors, which saw a hit today and they have seen their sales plummet by 15%. How do you see the auto sector recover in terms of consumption in the economy? Because it's an indicator of the interest rate, of the sentiment of the consumer. How do you see that as a backbone of consumption?
Auto, if you remember, last 2 years, it has had phenomenal growth. We saw phenomenal growth, and that is why there is some moderation which is now being seen. But it is expected with the festive season and a good monsoon, there could be some bit of a pickup going forward.
In more news, the Indian equity capital market hit a record high and raised $49.2 billion in the first 9 months this year, January to September period. A massive 115% growth was reported compared to a year ago. It surpassed the annual record set in 2020 by Proceeds. The number of equity capital market offerings also saw a 61% increase year on year, according to the report by LSEG. Initial public offerings from Indian issuers raised $9.2 billion, up 96% compared to the same period last year, making it the highest first nine-month total since 2021. Follow-on offerings, which accounted for 81% of India's overall equity capital market proceeds, raised $39.9 billion, up 119% from a year ago. The equity capital market issuance from India's industrial sector saw a 137% increase from a year ago. The report mentioned that infrastructure, renewable energy, healthcare and consumer goods are deal-making sectors driven by consumer spending.
और एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों ने आज मिलाजुला प्रदर्शन किया. जापान के नव निर्वाचित प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा ने केंद्रीय बैंक के गवर्नर काजुओ युदा से मुलाकात के बाद घोषणा की कि ब्याज दरें बढ़ाने का यह सही समय नहीं है, जिसके बाद टोक्यो शेयर बाजार का निकेई लगभग 2% से अधिक बढ़ा. हालांकि हांगकांग शेयर बाजार का हैंगसेंग इंडेक्स लगभग 1.5% गिरा. सिंगापुर के स्टेट्स टाइम्स इंडेक्स में भी 0.2% की गिरावट दर्ज की गई. इस बीच चीन और दक्षिण कोरिया में बाजार आज अवकाश के चलते बंद रहे. यूरोप के प्रमुख शेयर बाजारों में भी मिला जुला रुख दिखाई दिया. लंदन के फुटसी में लगभग 0.5% की बढ़त देखी गई, जबकि फ्रांस का कैक 0.5% से अधिक की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था. ताजा समाचार मिलने तक जर्मनी के डेक्स में 0.3% की गिरावट चल रही थी. दीपशिखा जी, अगर हम एशिया के बाजारों का हाल देखें और खासतौर से जापान में जो प्रधानमंत्री नए आए हैं और नई नीतियों की उम्मीद है, जैसा कि उन्होंने घोषणा भी की है, इसका असर आपको जापान की अर्थव्यवस्था पर और जो जापान और जो एशिया के अन्य देश हैं वहां की अर्थव्यवस्था और वहां के बाजारों पर किस तरह का दिखाई देते हैं?
देखिए, जो इंडिकेटर्स हैं और वहां पे जापान में बाजार जो है सिग्नल की अपेक्षा लेकर बैठा था कि ब्याज दरों पर खासतौर पे रुख क्या होगा और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए क्या करते हैं नए प्रधानमंत्री. तो जो उन्होंने इंडिकेशन दिया है उस हिसाब से लगता है कि बाजार को उन्होंने आश्वस्त किया है कि ऐसा कोई विचार अभी नहीं है और ये जो है अभी रेट्स को बढ़ाने की कोई बात नहीं कर रहे हैं. तो ऐसा लगता है कि बाजार, अगर ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वेस्ट एशिया का कंटेन हो जाता है, बहुत ज्यादा व्यापक नहीं होता है, तो वैश्विक बाजारों में भी थोड़ी सी राहत आएगी और वही इस पर भी असर डालेगी.
जी, और जैसा कि जो वेस्ट एशिया की प्रॉब्लम है उसका असर भारत के बाजारों पर तो दिखाई दिया, लेकिन अमेरिका के साथ साथ यूरोप के बाजारों को भी अगर हम देखें तो कुछ खास असर उसका दिखाई नहीं दे रहा है. क्या कारण है इसका?
अमेरिका के बाजार में जो इंतजार कर रहे हैं वो थोड़ा डेटा भी आने वाला है, उसका भी एक्सपेक्टेशन है कि वो डेटा कैसा होता है. दूसरा जो है वहां पर जो आईटी सेक्टर था, आईटी सेक्टर में काफी प्रेशर था कुछ समय पहले तक और वहां पर ग्रोथ को लेकर के आशंकाएं थी. तो अब चूंकि ब्याज दर घट गई है तो जो ग्रोथ को लेकर के आशंकाएं थी वो कम हो गई हैं. और वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट का ऐसा बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होगा. यूएस जो है क्रूड ऑयल प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब ऑयल प्रोड्यूस कर सकता है, एनर्जी का उनके पास उपाय है, तो उनकी डिपेंडेंसी नहीं है तेल को लेकर के. तो यही सब फैक्टर्स हैं, लेकिन जब पूरे बाजार में, पूरे विश्व में ऐसा कुछ बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा तो बाजारों पे असर जरूर आता
है. The news that's coming out is arbitrage by FIIs and they're looking to invest in the Chinese stock market, but the Hang Seng actually fell by 1.5% today, and you also have the Central Bank of China giving stimulus so that, you know, the economy picks up, the financial markets gain traction. What's the latest from Hong Kong and China right now?
So I think from the Chinese side, they are trying to stimulate their market. They are trying to provide support to their market. Economists are expecting that it could sort of help them in lot many ways. But how much is it late, or can it really address, you know, the slowdown that they were seeing? It's difficult to say right now, but definitely the markets are banking on the stimulus which has been provided to the economy. And the expectations are maybe that it'll be able to support some kind of, you know, demand there.
Let's move on to the U.S. Stock market. U.S. stocks ended with modest gains yesterday, led by a rise in technology shares. But investors remain cautious about escalating tensions in West Asia following Iran's ballistic missile attack against Israel. The Dow Jones Industrial Average rose slightly by 0.09%. NASDAQ Composite was marginally up by 0.08%. And the S&P 500 ended nearly flat. Despite what's happening in West Asia, it's not impacted the U.S. Stock market. In fact, even while you have the U.S. stock market live right now, the Dow has actually gone up by 40 points as we speak. Fundamentally speaking, how do you see the employment data playing out tomorrow?
See, data in the U.S. which came out is pointing at a very... pointing at a robust economy, and which is probably holding up the market sentiment in the US. So, and it is holding up so much that the conflict which could blow up is also not impacting. So I think that is really sort of keeping the hopes high.
Let's now move on to the oil market. Oil prices surged today as concerns about potential disruptions in supply from key exporting region outweighed a favorable global supply outlook. In the global crude market, Brent crude was trading up 1.3% at $74.90 per barrel, and the US WTI was also trading 1.5% up at $71.16 per barrel when reports last came in. Prior to the escalating West Asia tensions, oil prices were receding primarily because China has not been the same consumer it was before. But right now, the prices are going up because of what's happening in West Asia. Just tell us about India, because India is importing primarily from Russia, then followed by Iraq and Saudi Arabia. So how are we going to hedge our position in terms of supplies?
If you look at the oil market, in India is a huge buyer, so definitely we have diversified our basket. A few years back, we were a huge importer from Iran. A large quantum of our imports was coming. But that has been cut because of the sanctions imposed. And so is the supply to the global crude market. So India has a very diverse basket right now, and we would probably be hedging using our suppliers effectively. But rate increase, of course, has implications for, you know, future contracts. So India is definitely a country which gets impacted by the rising prices.
और चलते हैं सराफा बाजार का हाल भी जान लेते हैं. सराफा बाजार में आज सोना गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था. अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.45% गिरकर 76,050 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था. वहीं चांदी आधा प्रतिशत बढ़कर 91,910 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक अक्टूबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 0.47% गिरकर 75,312 रुपये प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था. वहीं दिसंबर में आपूर्ति की जाने वाली चांदी का वायदा मूल्य 0.43% बढ़कर 91,768 रुपये प्रति किलोग्राम पर चल रहा था. दीपशिखा जी, जैसे कि हम देख रहे हैं मौजूदा संदर्भ में जो पश्चिम एशिया में चल रहा है और जो शेयर बाजार का हाल है, ऐसे में सोने को आप निवेश की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण मानती हैं इस समय?
देखिए, सोने ने जो है, अगर पिछले कुछ महीने भी देखें या साल भी देखें, तो अच्छा रिटर्न दिया है निवेशकों को. और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में सोने का दाम बढ़ जाता है, पर इस समय ऑलरेडी काफी बड़ा हुआ है, तो थोड़ा हेज करके चलना ठीक रहेगा.
और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर. दीपिका जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और प्रमुख खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका धन्यवाद.
धन्यवाद.
Closing headlines in English. Prime Minister Narendra Modi will address a Kautilya economic enclave tomorrow in New Delhi. Domestic benchmark indices continue the downward trend for the fourth consecutive session. Sensex tanks over 1700 points. Nifty settles below 25,300 and crude oil prices spike amid supply disruption fears. Brent crude is trading at $74.90 per barrel. And that's all in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra.